اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی سے اور مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین ایک بار پھر سے آپ کی علمانہ خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے سنت. آج ہم اس لفظ پر، اس کی حقیقت پر اور اس لفظ کے برے استعمال کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے، کچھ روشنی ڈالیں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوا. سنت لفظ دراصل سنہ سے بنا ہوا ہے. اصلی لفظ عربی کا جو الفاظ ہے وہ ہے سنہ، اس سے سنت لفظ بنا. اسلام شروع ہونے سے پہلے، یا یوں کہیے سرکار دو عالم سے پہلے، جو عرب کی قبائلی زندگی تھی اس میں جو قبائلی رواج، رسمیں لوگوں کی تھی اسے سننا کہا جاتا تھا. سننا، آخر میں ہے کا تلفظ نکلتا ہے. تو اس وقت جو وہ تھی اس کے لیے جو ڈیفینیشن بنی وہ ہے رسمی سماجی قانون کا جوڑ. اب یہ رسمی اور سماجی، رسمی طور پر جو چلا آ رہا ہے، سماج میں جو چیز پھیلی ہوئی ہے اس کا جوڑ، ان دونوں کو ملا کر یہ سرکار دو عالم سے پہلے اسلام کے خلاف بھی ہو سکتا تھا اور اسلام کے حمایت میں بھی ہو سکتا ہے. رسم اور رواج تو ہے اور کیا ہے. سرکار دو عالم کے بعد ڈیفینیشن بدلی. سرکار دو عالم کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہوئی رسمی سماجی قانون کا جوڑ، جس میں قرآن اور حدیث شامل ہوں. ایک دوسری جگہ اس کی ڈیفینیشن یا سننا کے معنی عادت بھی دیے گئے ہیں. سننا یا عادت، عام طور پر سنت کے معنی سرکار دو عالم نے جو فرمایا اور جو سرکار دو عالم کے پاک جسم سے ظاہر ہوا اسے سنت کہا جاتا ہے. عام طور پر سرکار دو عالم نے جو فرمایا اور جو سرکار دو عالم کی عادت تھی، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ طریقہ، وہ طریقہ، ہر معاملے میں جو طریقہ رہا وہ سنت کہلاتی ہے. اور حقیقت میں ان سنتوں کا پابند ہونا بھی چاہیے، لیکن اب آ کر سنت کے معنی کافی بدل چکے ہیں. اس میں کیا کیا بدلا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں थोड़ा वापस दोबारा लौटेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे। रस्मी और सामाजिक कानून का वो जोड़ जिसमें कुरान और हदीस शामिल हों, यानी डेफिनेशन के मुताबिक कानून का वो जोड़ जो कुरान से और हदीसों से साबित हो, तो क्या कुरान में किसी रस्म या रिवाज का भी जिक्र है, या किसी रस्म और रिवाज को निभाने की पूरा करने का भी हुक्म दिया गया है कि तुम अरब में मौजूद इस रिवाज को, इस रस्म को ऐसे ही निभाते रहना। बल्कि सरकारे दो आलम से पहले, कुरान के नाजुल होने से पहले जो अरब के रस्म और रिवाज थे उनको छुआ ही नहीं गया, ना उनके लिए मना किया गया ना उनके लिए हाँ किया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि जो सुन्नत कुरान और उसकी व्याख्या, क्योंकि तरीका यह है कि कुरान से जो समझ में ना आए उसे आप हदीस, सही हदीस से समझने की कोशिश करें, और अगर कुरान से और सही हदीस से भी वो बात समझ में ना आए तो उसे अल्लाह के और रसूल के वारिसों के अकवाल पर, उनके फरमान पर तोल कर देख लें तो सुन्नत क्लियर हो जाएगी। यानी वो जो कुरान के मुताबिक हो उसका खोल कर बयान, अमली तौर पर बयान सरकारे दो आलम से जाहिर हुआ हो, चाहे फरमान से या अमली तौर पर, और अल्लाह के वलियों और वारिसों के जरिए उसकी तस्दीक हुई हो, वो सुन्नत हो गई। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि सरकारे दो आलम का कोई अमल या कोई फरमान माज़ अल्लाह कुरान के खिलाफ जाए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह के वारिसों, अल्लाह के वलियों का कोई फरमान या कोई कौल सही हदीसों के, कुरान के खिलाफ जाए? और कुरान के खिलाफ और सही हदीसों के खिलाफ नहीं गया तो अल्लाह के खिलाफ कैसे जाएगा? बहरहाल, तो सुन्नत की डेफिनेशन जो निकल के आती है वो निकल के ही आती है वो जो कुरान से साबित हो, सही हदीस से साबित हो, सरकारे दो आलम के अमल से साबित हो, और अल्लाह के वलियों से, दरवेशों के अमल और फरमान से साबित हो, वो सारे काम सुन्नत हैं। अब हम बात कर लें कि सुन्नत का बुरा इस्तेमाल। तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है, एक शख्स ने मेरे से कहा गोश्त का वो हिस्सा जो उस शख्स को खास तौर पर पसंद था, मटन के गोश्त का वो हिस्सा जो उस शख्स को खास तौर पर पसंद था, उस शख्स ने मेरे से कहा ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों भाई, उस हिस्से में क्या खास बात है? बोले सुन्नत है, सरकारे दो आलम इस गोश्त को नौश फरमाया करते थे। एक से ज़्यादा निकाह, दो तीन इजाज़त है, निकाह की इजाज़त है, हुक्म नहीं है। अपनी शहवत की वजह से एक से ज़्यादा निकाह करना और उसे ये नाम देना कि ये सरकारे दो आलम की सुन्नत है, अपनी शहवत को सरकारे दो आलम की सुन्नत का नाम दे देना कहाँ तक मुनासिब है, ये आप सोचिए। ये सोचना आपका काम है। और गौर कीजिए कि हमारे चारों समाज में चारों तरफ क्या हो रहा है और किस किस चीज़ को सुन्नत ठहरा दिया गया है। क्या वो हकीकत में सुन्नत है या वो रिवाज है, वो रस्म है। जब आप कुरान के तकाजे को पूरा करते हुए गौर व फिक्र का दायरा बढ़ाएंगे, अपने अंदर होश पैदा करेंगे, गहराई से फिक्र करना सीखेंगे, तो आपको बहुत कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा कि जो सुन्नत के नाम से हो रहा है। सुन्नत के सीधे सीधे मायने होगा कि सरकारे दो आलम ने फरमाया या किया, जैसे ही मैंने कहा सुन्नत है, बस अब उसके बाद ब्लॉक लग गया, वहीं पे ब्लॉक कर दिया गया उसे कि बस अब ये अटल हो गया। हम ये तस्दीक ही नहीं करते, न जाने क्यों हमने सवाल उठाने की आदत छोड़ दी है, जो कि हमारे ऊपर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की वजह होनी चाहिए। हमें कोई भी कह देता है ये सुन्नत है और हम मान लेते हैं, क्यों? क्या हमने कुरान के तर्जुमे में उसके सुन्नत होने का फरमान देखा? सरकारे दो आलम की सही हदीस, ये ग़ुलाम जब सही हदीस लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारी रिवायतों को सरकारे दो आलम के साथ जोड़ा गया है, सरकारे दो आलम पे बोहतान लगाया गया है। जब ये तसव्वुफ़ का खादिम सही हदीस, बार बार सही हदीस, सही हदीस, और ख़ुद सही हदीस जो कही जाती हैं वो भी सरकारे दो आलम के वक्त के काफ़ी बाद जमा हुई हैं। जब कुरानी हज़रत उमर के टाइम वक्त में शुरू होकर हज़रत उस्मान के वक्त में पूरा हुआ तो हदीसें तो तकरीबन 500-600 साल का फ़र्क रहा है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 500-600 साल में कुछ नहीं बदला गया था? साइकोलॉजिकल तौर पे तो ये फिट होता ही नहीं है। बहरहाल सुन्नत वो जो कुरान से साबित हो, सरकारे दो आलम के फरमान और आदतों से, अमल से जाहिर हो, और अल्लाह के वली, अल्लाह के दरवेशों से साबित हो, वो सुन्नत, और उसी पे अमल करना चाहिए। और आप से गुजारिश करता है ये तसव्वुफ़ का खादिम कि सुन्नत के नाम से बहुत सारे काम सुन्नत का नाम लेकर सुन्नत को बदनाम करने के लिए इंसान बड़ा माहिर है। इंसान बड़ा माहिर है दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी में। सुन्नत का नाम लेकर सुन्नत को बदनाम करने के लिए जो काम आज के दौर में हो रहे हैं उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। आज हमने लफ्ज़ सुन्नत के ऊपर बात की और उसे समझने की कोशिश की, और ज़्यादा समझ जो आएगा वो तो आपके गौर व फिक्र, आपके होश, आपके चारों तरफ गौर से, फिक्र भरी निगाहों से देखने से जो तजुर्बा आएगा वही आपको हकीकत में सुन्नत और सुन्नत के नाम से जो गंदगी फैली हुई है उसका फ़र्क बारी ताला इस ग़ुलाम पर और आप सब पर روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ یہ خادم اجازت چاہتا ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔